डैडी, आपने बेड पर छींछी कर दी। आप इतने बड़े होकर भी बाथरूम नहीं गए। अंशु तो लिटिल गर्ल है, फिर भी वो रात को भी उठकर बाथरूम चली जाती है, कभी बेड गीला नहीं करती। इतना कहकर अंशु खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरवी की भी हंसी छूट गई, बाकी सब भी खुद को हंसने से रोक नहीं सके। शान पहले तो उसकी बात सुनकर अवाक सा उसे देखता ही रह गया, पर जैसे ही उसके कानों में आरवी के हंसने की आवाज़ पड़ी, उसके भाव एकदम से सख्त हो गए। उसकी घूरती नज़रें आरवी पर पड़ी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए चेहरा घुमा लिया। शान ने अब बाकी सबकी तरफ निगाहें घुमाई और सबको हंसता देखकर उसने चिढ़कर कहा, हंसना बंद कीजिए आप सब, पानी गिर गया उस पर इसलिए गीला हो गया है। अब सब चुप हो गए। शान काफ़ी गुस्से में लग रहा था, होना भी चाहिए, आखिर उसकी अपनी बेटी ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी सबके सामने। घरवाले तो घरवाले, नौकर तक सब उस पर हंस रहे थे, ये वो भला कैसे बर्दाश्त कर पाता। शान का गुस्सा देखते हुए अर्पिता जी ने अपनी हंसी रोककर मुस्कुराकर सवाल किया, मैट्रेस गीला हुआ कैसे, उस पर पानी कैसे गिर गया। उनका सवाल सुनकर शान ने दांत पीसते हुए आरवी को घूरते हुए कहा, वो तो आप अपनी लाडली बहू से ही पूछिए। सबकी नज़रें आरवी की तरफ घूम गई। आरवी ने सबकी नज़रों को खुद पर टिका देखा तो झट से बोली, वो मुझसे जग का पानी गद्दे पर गिर गया था। उसकी बात सुनकर किसी को विश्वास तो नहीं हुआ, पर किसी ने कुछ कहा भी नहीं। शान गुस्से में वहां से चला गया। आरवी ने सब बर्तन किचन में रखे। सुयश जी भी आज घर पर ही थे तो वो सुभाष जी के साथ हॉल में बैठ गए। आरवी सुभाष जी की दवाई और तेल वहीं ले आई। अंशु वहीं बैठकर पढ़ाई करने लगी। वो बड़ी हो गई थी तो उसे अब पढ़ाई करनी चाहिए, तो आरवी उसको पढ़ा रही थी और साथ में सुभाष जी के पैरों की मालिश भी कर रही थी। अर्पिता जी ने जाकर चेक किया, फिर दूसरा मैट्रेस मंगवा दिया क्योंकि वो तो पूरा गीला हो गया था, और वो समझ गए कि नीचे जो आरवी ने कहा वो झूठ था। इसके साथ ही उनके दिमाग में कुछ चलने लगा। कुछ देर बाद आरवी हाथ धोकर उनके साथ बैठ गई। दोनों भाई बात कर रहे थे और आरवी अंशु को पढ़ा रही थी। छाया अंशु का कमरा साफ कर रही थी और बाकी सबके कमरे साफ करवा रही थी। कुछ देर में अर्पिता जी भी आकर आरवी के पास बैठ गईं। बड़ी माँ, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, आरवी ने उन्हें देखकर कहा। अर्पिता जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, पूछिए बेटा। अंशु 5 साल की हो गई है, बल्कि छाया ने बताया कि कुछ महीनों बाद 6 साल की हो जाएगी। फिर अभी तक उसका एडमिशन क्यों नहीं करवाया गया? अभी उन्हें 1 क्लास में होना चाहिए और वो स्कूल ही नहीं जाती। आरवी के दिमाग में कई दिनों से ये सवाल चल रहा था, आखिर में उसने पूछ ही लिया। उसकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे, जवाब तो किसी के भी पास नहीं था। वहीं आरवी का सवाल सुनकर अंशु ने उसे देखकर मासूमियत से सवाल किया, मम्मा स्कूल क्या होता है? उसके सवाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंशु आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी। आरवी ने प्यार से उसके गाल को छूकर मुस्कुराकर कहा, बेटा स्कूल वो जगह है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां वो स्टडी करते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, वहां अंशु जैसे और भी किड्स होंगे। अंशिका ने फिर से मासूमियत से भरा सवाल किया तो आरवी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वहां आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ आप खेलेंगी, उनसे फ्रेंडशिप करेंगी। मम्मा अंशु को भी स्कूल जाना है, अंशु ने उसके दुपट्टे को खींचते हुए प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा। उसकी मासूमियत देखकर आरवी ने प्यार से उसके माथे को चूमकर कहा, बिल्कुल आप भी और बच्चों की तरह स्कूल जाएंगी, मम्मा खुद आपको छोड़ने जाएंगी। उसकी बात सुनकर अंशिका खुश हो गई और आरवी के कहने पर ध्यान से पढ़ने लगी। आरवी ने अब अर्पिता जी को देखा तो वो उसे एक तरफ ले गई। आरवी ने कन्फ्यूज निगाहों से उसको देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ बड़ी माँ? आरवी को उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। अर्पिता ने अब गंभीरता से कहना शुरू किया, बेटा अंशु के एडमिशन की बात हमने भी बहुत बार शान से की है, पर वो हर बार इनकार कर देते हैं, वजह हम भी नहीं जानते। शायद वो नहीं चाहते कि बाहर कोई अंशु के बारे में जाने, इसलिए उन्हें दुनिया की नज़र से छुपाकर यहाँ रखते हैं। पर बड़ी माँ ये तो गलत है, वजह चाहे जो हो, हम अंशु को हमेशा घर की 4 दीवारों में कैद करके तो नहीं रख सकते। माना कि उन्हें घर में पढ़ाया जा सकता है, पर स्कूल में जाना और बच्चों के साथ बैठना उठना, उनके साथ खेलना, हर बच्चे के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल जाने से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम आपकी बात समझते हैं बेटा, पर शान नहीं मानेंगे, उनसे मैं बात करूंगी। अंशु का एडमिशन होकर रहेगा, मैं उनसे उनके बचपन के किसी खास पल को छीनने नहीं दूंगी, आरवी ने अंशु को देखते हुए कहा। तो अर्पिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सही समय देखकर ही उनसे इस बारे में बात कीजिएगा, वरना वो बेवजह आपसे और नाराज हो जाएंगे। आरवी ने मुस्कुराकर कहा, जी बड़ी माँ मैं ध्यान रखूंगी। फिर दोनों वापस उन सबके पास चले गए। आरवी उसको पढ़ाने लगी और सुयश जी और सुभाष जी सालों बाद साथ में चेस खेलने लगे। सभी नौकर अपना अपना काम निपटाकर वहां आकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ शान ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा कल कार्तिक ने जो फाइल दी थी उसे चेक कर रहा था। आज उसे स्क्रीन टेस्ट देखने के लिए ऑडिटोरियम जाना था और निकलने का वक्त हो गया था। रिहान आज फिर बिना नॉक किए ही उसके कैबिन में घुस गया तो शान ने चिढ़ते हुए उसको घूरा, पर रिहान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ, रात को सोया नहीं है क्या? आंखें देख कैसे चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, ऐसे जाएगा ऑडिटोरियम? शान ने उसको घूर कर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने ब्लैक गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ा लिए और कैबिन से बाहर निकल गया। रेहान पीछे से उसको देखते हुए खुद से ही बोला, अब इसे कौन सा सदमा लग गया है? इस लड़के का भी कुछ समझ नहीं आता, हर वक्त खड़ूस बने घूमता रहता है। माना जिंदगी ने बहुत कुछ रंग दिखाए है उसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी जीना ही छोड़ दे, मुस्कुराना ही भूल जाए। पता नहीं कब मुझे अपने यार के लबों पर मुस्कान देखने का मौका मिलेगा। पहले तो कभी कभी मुस्कुरा भी लेता था, पर जब से भाई को खोया है इसने तो खुशियों से ही मुंह मोड़ लिया है। अगर अंशु नहीं होती तो शायद ये जिंदा भी नहीं रहता। प्लीज भगवान, बहुत दर्द दे दिया आपने मेरे यार को, अब बस कर दीजिए, अब तो उसकी जिंदगी में खुशियों को आने दीजिए। भाभी से उम्मीद है मुझे, बस शान एक बार अपने आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी खोलकर उन्हें देखे तो शायद शान फिर से जिंदगी जीने लगे, उसने ऊपर देखते हुए कहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। दोनों ऑडिटोरियम पहुंचे, सारे कंटेस्टेंट वहां पहले से पहुंचे हुए थे। कार्तिक सब इंतजाम देख रहा था, प्रोड्यूसर भी वहां मौजूद थे। सारे कंटेस्टेंट भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन टेस्ट शुरू हुआ। शान एकदम सीरियस लुक लिए सामने देख रहा था। आधे दिन से ज्यादा वक्त इन्हीं सब में निकल गया। मेल लीड के साथ जो फीमेल लीड सिलेक्ट हुई थी उसका भी स्क्रीन टेस्ट हुआ। दोनों का साथ में टेस्ट लिया गया ताकि देख सके कि वो एक अट्रैक्टिव कपल लग रहे हैं या नहीं, उनके बीच केमिस्ट्री ठीक है या नहीं।
इन्हीं सब में उनका आधे से ज्यादा दिन निकल गया। उसके बाद मेल लीड और फीमेल लीड का साथ में फोटोशूट शुरू हुआ, क्योंकि मार्केटिंग टीम को भी अब काम पर लगना था। पोस्टर्स, बैनर्स बनने थे, न्यूज़पेपर, टीवी और अदर साइट्स पर एड्स चलने थे। ये सब काम मार्केटिंग टीम को करना था। ऑलमोस्ट सारा दिन उनका इन्हीं सब में निकल गया। बाकी की मीटिंग्स अगले दिन शेड्यूल की गईं और सभी अपने अपने घर चले गए। टू बी कंटिन्यूड।